ये है 31/12/88 का पर्टिकुलर। इकतीस बारह अठासी का कहते क्लास 14 नंबर के रजिस्टर में 162 पेज रिकॉर्ड चला है। कौन आया मेरे मन के द्वारे फाइल की झनकार लिए। फाइल किसे कहते हैं? फाइल कहो, घुंघरी कहो, महाकाली को घुंघरू दिखाए जाते हैं। घुंघरू का अर्थ क्या है? आवाज करते हैं, आवाज भी करते हैं। निर्भयता की घुंघरू। तो ये सब बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत हैं, खास भारत में तो ढेर के ढेर सत्संग हैं। अनेक मत मतांतर हैं, वास्तव में वो कोई सत्संग नहीं है जिनमें ढेर मत मतांतर है। सत्संग एक होता है, बाकी को तो लत संग कहेंगे। लत संग क्या होता है? हाँ, लात मार के भगाए देते हैं, वो हुआ लत संग। सत्संग में किसी को लात मार के भगाए देने की बात नहीं, क्योंकि सच्चाई तो सर पे चढ़ के बोलेगी। सच्चाई पे एक दिन हरेक को स्वीकार जरूर करना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई हट करने की जरूरत नहीं, कोई के ऊपर जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। सच्चा तो है भी सत्य, था भी सत्य और होगा भी सत्य, उसके लिए कोई हट करने की जरूरत नहीं। तो सत्संग ऐसा है एक, क्योंकि ये दुनिया कैसी है, झूठ खंड। झूठ खंड में सब झूठे झूठे। एक परमात्मा बाप संगम युग में आया हुआ है, वो है सत्य, और बाकी सब असत्य। तो एक का संग पहचान करके, प्रैक्टिकल में जान करके, वो हुआ संग सत्य संग, और बाकी सब लत संग। क्योंकि सभी परमात्मा से बेमुख करने वाली बातें सुनाते हैं। तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे कहां? वहां माने कहां? बुद्धि की याद उसी की तरफ जाएगी। किसकी तरफ? विद्वान आचार्य पंडित के पास। यहां तो फिर अनोखी बात है। क्या अनोखी बात है? यहां कोई विद्वान आचार्य या पंडित सुनाने वाला नहीं है, कोई शास्त्री जी नहीं है। ये सत्संग तो एक ही बार इस संगम युग पर होता है, जिसके लिए गायन है, संग तारे कुसंग बोरे। ये तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूं, तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो, शरीर से ही बातें बोलते हो, शास्त्र याद करके फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वो तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात, साथ तो जन्म जन्मांतर सुने, मनुष्यों के द्वारा लिखे गए, मनुष्यों के द्वारा सुनाए गए और मनुष्यों ने सुने, और यहाँ यहाँ परमात्मा बाप रूहानी बाप है सुनाने वाला, और रूहे हैं रूहानी स्टेज में रहने वाले हैं सुनने वाले, और पढ़कर के सुनाने वाला कौन भी है, जो रूहानी स्टेज में रहने वाला बाप है वही ब्रह्मा की सोल को पढ़ाई पढ़ाता है। तो कहता है बच्चे रूहानी स्टेज में स्थिर हो जाओ, मैं रूहों को पढ़ाता हूँ, देह अभिमानी सांडों को नहीं पढ़ाता हूँ। तो बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं हे मेरे सिकिल्ले बच्चे, हे मेरे सालिग्रामो, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। पढ़ाने वाला शरीर भी कौन सा था? 5000 वर्ष पहले यही शरीर था जिसके द्वारा पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है। तो वही 5000 वर्ष पहले वाला बाबा अब आया हुआ है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वो है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इनों के माता पिता कौन है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं कि माता पिता कौन है, तो उसमें भी वो मुझते हैं, कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं। तो विचार करते रहते कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है, मंदिरों में पूजा किसकी होती है? शंकर की पूजा होगी त्रिमूर्ति में, और विष्णु की पूजा होगी, ब्रह्मा की पूजा तो होती नहीं, मंदिर होती नहीं, मूर्तियां होती नहीं। कृष्ण आदि की तो पूजा करते हैं, पूजा का आधार क्या? पूजा का आधार प्योरिटी। तो क्या ब्रह्मा ने प्योरिटी धारण नहीं की? जो ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं कि ब्रह्मा कोई तीन देवताओं में से देवता नहीं था, कोई विकारी मनुष्य था क्या? पावन तो कोई नहीं है, ब्रह्मा को कोई जानते भी नहीं होंगे, ना उनके लिए तपस्या करते हैं। ब्रह्मा की तपस्या कौन करेगा? प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है। अभी तक बात किसकी चली? ब्रह्मा की, और अब प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है। यह है पतित प्रजापिता। तीन देवताओं को तो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, ऊंची स्टेज में, लेकिन प्रजापिता सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता। जहां प्रजा होगी वहां प्रजापिता होगा, प्रजा पतित तो प्रजा का बाप भी पतित ठहरा। तो बाप बैठ समझाते हैं कि ये सारी दुनिया पतित है, क्योंकि जब बीज ही पतित है तो सारा वृक्ष ही पतित है, बीज मन प्रजापिता आदम एडम। तो जरूर ये भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे, ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले दूसरे तीसरे जन्म में पतित। कब पतित? जन्म मरण के चक्र में आते आते, जैसे बीज कई बार बोया जाता है तो उसकी ताकत क्षीण हो जाती, छोटा पौधा पैदा होता है उसमें फल कम निकलता है, तो ऐसे ही वो प्रजापिता की सोल, एडम की सोल, वो भी जन्म के चक्र में आते आते अपने अंतिम जन्म में पतित हो जाती। तो इस दुनिया में कोई पावन नहीं है, नाम यह है पतित दुनिया। पतित हैं तब तो कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं, पावन को तो कहीं जाने की दरकार है नहीं। पावन तो जहां होगा उसको वहीं सब माथा टेकने के लिए आवेंगे। कुआ कभी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। तो पावन को कहीं भटकने की दरकार नहीं। कहां की बात बताई, ये बात सब कहां के लिए बताई? संगम युग की बातें बताई, वर्तमान समय की बातें बताई कि जो पतित हैं उनको भी भटकना होता है, पावन को भटकने की दरकार नहीं है। हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं, सभी नदियां निकलती हैं सागर से, गंगा सागर के मेले में कौन कौन सी नदियां होती हैं? अरे सारी नदियों का पानी होता है, खास खास जो नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती और उनकी सहयोगी नदियां, ढेर सहयोगी नदियां हैं, फिर ब्रह्मपुत्र नदी है, फिर हुगली नदी है, तो सारी नदियों का मेल होता है। उस मेले पर जाते हैं, सिर्फ नदियों का मेल नहीं होता है, वो नदियां तो सब कहां गिरती हैं जाकर के? पहले ब्रह्मपुत्र नदी में। गंगा कहां मिलती है जाके? ब्रह्मपुत्र नदी में, फिर सागर में। कहते हैं गंगा सागर का मेला, और गिरती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिर्फ नदियों का मेला नहीं है, किसका किसका मेला है? सागर और नदियों का मेला। नदियों में भी कौन सी मुख्य नदी जिसका मेला है वास्तव में? ब्रह्मपुत्र। तो ये मेला बहुत गाया जाता है, गंगा सागर का गायन है, लेकिन वास्तव में मिलन मेला जास्ती किसने मनाया है? ब्रह्मपुत्र। गायन इसलिए है कि गंगा जो है वो प्योरिटी में भारत की नदी है, उत्तर भारत की, और अंत में निकलती है, तो प्योरिटी में वो बाजी मार ले जाती है चंद्रमा से भी जाती। चंद्रमा मन ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म। तो चंद्रमा का स्थान कहां, पार्वती का स्थान कहां, और गंगा का स्थान कहां? चंद्रमा का स्थान तो फिर भी माथे पर, तुम्हारी बात सर माथे पर, कैसा सर माथे पर उठाए रखा है, माना उसको बहुत मान दिया है। और गंगा को तो एकदम सर के ऊपर रख लिया। तो जैसे परमात्मा बाप का पति तो पावन का गायन है, तो उनके साथ गंगा का भी पति तो पावनी का गायन है। क्यों? गंगा तो दोनों रूप हैं। गंगा का जो आज का रूप है, स्थूल रूप में गंगा का, उसमें दुनिया भर के नाले जाकर के गिरते हैं, शहरों का सारा ही गंद जाकर के मिलता है, तो उसको पतित पावनी गंगा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सागर से अगर कनेक्शन नहीं है तो नदी नहीं, वो नाला है। कनेक्शन का मतलब बुद्धि से योग। सिर्फ बुद्धि से योग नहीं, बुद्धि से योग होगा तो प्रैक्टिकल में भी होगा जरूर। तो कनेक्शन माना संबंध। जिन नदियों का सागर से प्रैक्टिकल संबंध ही नहीं है, वो नदियां पतित पावनी नहीं हो सकती। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ऊंची ऊंची स्टेज पर तो बहती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र में स्नान कितने करते हैं और गंगा में इतना स्नान कितने करते हैं? गंगा में स्नान बहुत करते हैं और ब्रह्मपुत्र ऊंची स्टेज पर तो है। परमात्मा बाप के साथ उसका ऊंची स्टेज में मिलन तो है। ब्रह्मा कहो या जगदम्बा कहो, ये ब्रह्मा कौन है? वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, जगत की अम्बा। तो उसका मेल तो है, मिलन मेला तो सबसे जाती है, लेकिन ऊंची स्टेज का भी है, लेकिन वो सर्विस जिससे सारे विश्व का कल्याण हो, वो सर्विस का कार्य ब्रह्मा के द्वारा या जगदम्बा के द्वारा नहीं हुआ। जगदम्बा का मेला बहुत बड़ा है। क्यों? जैसे गंगा सागर का मेला बहुत बड़ा है, वैसे जगदम्बा का भी मेला बहुत बड़ा है। ये मेला इतना बड़ा क्यों है? जगदम्बा का मंदिर इतना छोटा क्यों है? मेला इसलिए बड़ा है कि परमात्मा साहब बाप के साथ उसने मिलन मेला जास्ती मनाया। तो गंगा सागर का मेला कहो, ब्रह्मपुत्रा सागर का मेला कहो, या जगदम्बा जगत पिता का मेला कहो, उस मेले की यादगार इस रूप में तो प्रसिद्ध है। लेकिन जो जगत का कल्याण है, वो सर्विस के बगैर नहीं हो सकता। तो सर्विस जो है, वो सर्विस का फील्ड गंगा के लिए दिखाया हुआ है। कहां से उतरती है गंगा? उतरती तो है पहाड़ से, लेकिन जहां से उतरती है वहां यादगार क्या दिखाई है? गौमुख दिखाया। तो गौ भी कोई दूसरी नहीं है। पहली पहली गौ माता कौन है? पहली पहली कामधेनु गीता माता कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा कहो, ब्रह्म बड़ी माँ कहो, बात एक ही है। तो उस गंगा का भी जन्म कौन देने वाला है? जगदम्बा। गंगा को भी जन्म देने वाला जगदम्बा। तो बताया कि सभी नदियां निकलती हैं सागर से, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे गंगा हो, चाहे कोई भी नदी हो। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगा। महत्व तो तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो, कोई कहां से कोई कहां से। वो लोग कुछ दिखलाते हैं, तीर मारा और गंगा निकली। क्या पैदाइश कैसे हुई गंगा की? कि अर्जुन ने बाण मारा और ज्ञान का बाण मिला, लगा धरनी को और उसमें से गंगा निकल आई। तो कोई स्थूल धरनी की तो बात है नहीं, काहे की बात है? जरूर कोई माता है चैतन्य में जिसको ज्ञान का बाण लगता है और गंगा उसमें से निकल आती है। गंगा भी कोई पानी की गंगा नहीं है, जड़ गंगा की बात नहीं, चैतन्य ज्ञान गंगा की बात है। तीर मारने की भी बात नहीं, कोई लोहे का बाण मारा हो, ये तो है ज्ञान बाण। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती हैं। तो अब बाबा घर बैठे विगर तपस्या किए ब्रह्मा का साक्षात्कार, कृष्ण का साक्षात्कार कराते। क्या भक्ति मार्ग में तो तपस्या करनी पड़ती है, काहे के लिए? साक्षात्कार करने के लिए कितनी नवधा भक्ति करते हैं, कितनी परेशानी उठाते हैं। कृष्ण का साक्षात्कार भी कराते हैं बाल रूप का। शिव बाबा कहते हैं मैं भी बालक बनकर के आता हूं। कौन सा बालक? माताएं कौन से बालक को याद करती हैं? कृष्ण बच्चे को। तो मैं भी बालक बनकर के आता हूं। इस समय ही ड्रामा में ये सब पार्ट है। ऐसे नहीं कहते कृष्ण बनकर के आता हूं। क्या कृष्ण बालक तो सतयुग में होगा और कैसा होगा? पवित्र होगा। और यहां तो सारी दुनिया कहती है सारी दुनिया पतित है, व्यभिचारी है, झूठी है। तो ऐसे नहीं कहते सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण बन करके आता हूं। नहीं, इस समय ही ड्रामा में ये सब पार्ट है जो बजता जा रहा है। मैं किस में आता हूं? प्रजापिता ब्रह्मा में आता हूं, पतित तन में, पतित देश में, पतित दुनिया में आता हूं। ये कोई नई बात नहीं समझते हैं। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। कौन से ड्रामा के बंधन में? कि मैं कोई पवित्र सन्यासी में नहीं आऊंगा, पवित्र कन्या के तन में नहीं आऊंगा, पतितों को पावन बनाने के लिए मुझे किस में आना पड़े? पतित तन में आना पड़े। तो ये ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है। 500 600 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पार्ट निश्चित किया हुआ है, तो मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई पछताए बैठ के, गिलगिलाए अंदर से, ग्लानी करे, अरे कहां के समय आता है, हमें नहीं ऐसा चाहिए, हमें तो कृष्ण का नहीं आ चाहिए। सती गोवाला जिस कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, हमें तो ऐसा चाहिए। तो बाबा कहते ना, मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, मैं ऐसे अभिविचारी कृष्ण में नहीं आता हूं, मैं पति तन में आता हूं। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। ये सभी हैं गपोड़े। ऐसे नहीं कि भगवान आकर के प्रकृति के नियमों को तोड़ देगा। मैं आता हूं पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। पढ़ाने के लिए आता हूं तो पढ़ाई पढ़ाऊंगा या ताकत दिखाऊंगा। पढ़ाई भी दो तरह से पढ़ाई जाती है, एक पढ़ाई जाती है मुख से, और जो बच्चे मुख के कहने से नहीं पढ़ते हैं तब क्या होता है, तब प्रैक्टिकल रूप तांडव नृत्य। मुरली तो मीठी होती है, मीठे मीठे समझाने से नहीं समझा तो क्या करना है, ताड़ना, पिटाई करने वाला ज्ञान डांस। तो भक्ति मार्ग में दोनों के डांस प्रसिद्ध हैं। उसको कहते हैं नटवर, किसको, कृष्ण कन्हैया को, वो भी ज्ञान डांस करता है। उसको कहते हैं नटवर, नटवर मन नाच नाचने वालों में श्रेष्ठ है। और उसको क्या कहते हैं, शंकर को, नटराज, नाच नाचने वालों का राजा, कंट्रोलर। तो खुद तो नाच अच्छा ही जानता होगा ना। और तो दो टांगों से नाचेंगे, और वो है चार, वो तो एक ही टांग से नाचता है। तो साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नौदा भक्ति करते हैं, मैं तो साक्षात्कार कराता हूं, जैसे काली का रूप दिखाते हैं। आज बाबा कौन सी जगह पहुंचे हुए, गंगा सागर पहुंचे हुए। बाबा के मन में कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, काली में किसका गहन है, है कलह क्लेश कट्टा करने वाली। जैसे काली का रूप दिखाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं, मालिश कर लियो। मालिश करने से क्या होता है, कुछ होता है क्या है? हाँ, गर्मी दूर हो जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, कैप्सूल लेने की, 303 का कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मुरली में तो बाबा ने बोला हुआ है तेल आदि लगाना, ये सब तमो प्रधान बातें हैं। तेल लगाना, तेल लगाने से क्या होगा, नसों में गर्मी आएगी, नसों में गर्मी आएगी तो इंद्रियों में उत्तेजना आएगी, इंद्रियों में उत्तेजना आएगी तो काम विकार की वासना आएगी। तो ये तेल आदि लगाना, मालिश करना, ये क्या है, ये तो तमो प्रधान चीज है। तो काली पर क्या कर क्या चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते। और शनिचर देवता पे क्या चढ़ाते हैं, है? उन पर भी तेल ही चढ़ाते हैं, वो भी काली माई और वो भी काला देव। अब ऐसी काली तो है नहीं, जैसी उन्होंने काली भुजंग दिखाई दी है, इसका मतलब बाबा ने देखी है तो गोरी चिट्ठी, लेकिन एक्ट के आधार पर नाम पड़ जाता है काली। कोई काले कर्म किए हैं जो उजागर नहीं किए जाते सबके सामने, समाज के सामने, जैसे शादी की जाती है ना, किसके सामने की जाती है, समाज के सामने, धड़ल्ले से बाजे गाजे बजाएगी, तो ऐसे काम वो नहीं करती। कैसे करती है, काले कर्म किसे कहा जाता है, काला मुंह किसे कहा जाता है, हाँ जो छिप के काम किया जाता है, डर के किया जाता है, वो काला कर्म होता है। तो काली का ऐसा रूप तो है नहीं, परंतु नौदा भक्ति से बाबा भावना का बहाड़ा दे देते हैं। नौधा, नौ प्रकार की भक्ति भी कितने प्रकार की, नौ प्रकार की भक्ति। सिर्फ अव्यभिचारी भक्ति शिव की नहीं, नौ देवताएं हैं, नंबर वार ऊपर से लेकर नीचे तक सब धर्मों के बीज। तो अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नौदा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में वो तो उन्होंने उसका रूप दिखाई दिया है काली का, वास्तव में काली तो जगदम्बा है। काली मन पेज का मध्यांत तो बताया, वास्तव में काली तो जगदम्बा है। दोनों इन काम के ता पर बैठ काले हो गए। कौन दोनों है? किस समय की यादगार है? है किसकी बात हो रही है? अभी बात हो रही है काला देव और काली देवी की, महाकाल और महाकाली की। देवी तो एक ही है जो प्रवेश करके टाइम टू टाइम अलग अलग मूर्तियों में अलग अलग पार्ट बजाती, तो नाम अलग अलग पड़ जाते हैं काम के आधार पर। कहीं नाम दुर्गा है, कहीं नाम वैष्णो देवी है, कहीं नाम लक्ष्मी है। लेकिन बताया कि वास्तव में काली जगदम्बा है। दोनों ही काम चिता पर बैठ काले हो गए। दोनों माने कौन? हाँ, प्रजापिता और जगदम्बा, दोनों ही काम चिता पर बैठ काले हो गए। कब काले हुए है? संगम युग पर। अरे संगम युग में भी कब? आद में कि अंत में कि मध्य में? यज्ञ के आद में। आद का गायन है, संपूर्ण देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं मंदिरों में, ये अपूर्ण के चित्र बनाए जाते हैं। संपूर्णता की स्टेज के चित्र बनाए जाते हैं। संपूर्णता का रहस्य है आदि का रहस्य नहीं है। आदि में तो पुरुषार्थ संपन्न नहीं होता। पुरुषार्थ संपन्न कब होता है? अंत की स्टेज। क्योंकि ऐसा गुह्य राज है जो सबकी बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बोला कि 100 की माला तो फिर भी 90% बन जाती है, लेकिन 8 में ऊपर नीचे बहुत होते हैं। 100 के बाद 8 कौन से होते हैं? जो अष्ट देव गाए गए हैं, अष्ट देव, अष्ट रत्न, नवरत्नों में जिनकी पूजा होती है, सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। वो आत्मा ऐसी रहस्यमयी पुरुषार्थी है कि अभी अभी हाईएस्ट स्टेज पर और अभी अभी लोएस्ट स्टेज पर, तो उनका मुकाबला कौन कर पाएगा? अभी एकदम ऊंचे एक सेकंड में और अभी एकदम नीचे, इतनी पुरुषार्थ की गति तीव्र है। जैसे ब्रह्मा बाप की पुरुषार्थी की गति बाबा ने तीव्र बताई, वैसे अष्ट नव रत्नों की भी गुह्य गति पुरुषार्थ की। तो वो गुह्य गति का जो हिसाब है वो बताया कि किस समय का है?
वो हिसाब अब का है, वर्तमान समय का। जबकि अव्यक्तवाणी में बोला कि अष्टरत्न सबसे जास्ती नीचे और ऊपर हो रही है, उनकी वजह से माला सेट नहीं हो पा रही है, वो मणके सेट नहीं हो पा रहे हैं। वो जब डाउन में जाते हैं तो जो 90% की माला तैयार होती है वो भी अप एंड डाउन में आ जाती है। तो बोला काले तो दोनों हो गए, काली का ऐसा रूप तो नहीं है जैसे स्थूल रूप में काली दिखाई गई है। मतलब बाबा का है तो सुंदर रूप दिखाते हैं ना, काली, महाकाली, अकाली। अकाली कौन से धर्म में माना जाता है? सिख धर्म में कहते हैं अकाली, अकालता। तो ऐसा रूप तो है नहीं, परंतु नवधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। वो ऐसे चित्र की बैठ पूजा करते हैं तो बाबा उसी का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। गोरे काहे से? ज्ञान, ज्ञान, जानने, जानने से गोरे और अज्ञानता से काले। क्या जानना है और क्या न जानना है? है? जानना क्या है और अजानना क्या है? अज्ञानता क्या है और ज्ञान क्या है? बाप को जानना वो है ज्ञान, और बाप को भूल जाना वो है अज्ञान। बाप कौन? देह के बाप तो दो हैं। कौन से दो बाप? एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। तो जानना किसे है? मनुष्यों के बाप को जानना है, आत्माओं के बाप को सिर्फ जानना है। हाँ, आत्माओं का बाप तब तक जानने में नहीं आएगा क्योंकि प्रैक्टिकल संबंध संपर्क में ही नहीं आएगा। बिंदु कैसे संबंध संपर्क में आएगा जब तक वो शरीर में प्रवेश न करे? तो वो शरीर में प्रवेश करता है और उसके पार्ट को पहचाना जाता है कि इसमें वास्तव में हमारा कल्याण करने वाली आत्मा कौन सी पार्ट बजाए रही है, हमें लेना देना किससे है, किससे लेना देना है, कौन सी सोल से लेना देना है, मनुष्यों के बाप से या आत्माओं के बाप से? दोनों का कंबाइंड रूप है ना, तो लेना तो दोनों से है, लेकिन देने वाला कौन सी आत्मा है? शिव बाबा। तो हर समय ये बुद्धि में याद रहे कि हमको डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है, हमको डायरेक्शन प्रजापिता देने वाला नहीं है। संबंध और संपर्क में आते हुए संग से रंग लगाने वाला शिव बाबा है। ये ज्ञान रहे, ये ज्ञान रहे, इसमें अज्ञानता ना जाए। देने वाला कौन है? शिव बाबा। मनुष्यों का बाप वो आत्मा तो स्वयं ही पतित है, नहीं लेने वाली भी नहीं कहेंगी। प्रजापिता का पार्ट तो प्रजापिता जो है वो प्रजापिता का पार्ट तो स्वयं इस पतित सृष्टि का है ना। पतित में ही परमात्मा बाप को आना है, यही ड्रामा बना हुआ है। तो देने वाली आत्मा कौन है? शिव बाबा। अगर हम शिव बाबा को याद कर रखेंगे बुद्धि में तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। जैसे बाबा ब्रह्मा के द्वारा बोलते थे, कोई बच्चा गोद में आते थे तो बाबा क्या कहते थे, बच्चे किसकी गोद में आए हो? अगर समझेंगे कि बाबा की गोद में आए हैं, कौन से बाबा की? शिव बाबा की। शिव बाबा की गोद में आए अगर ये बुद्धि में होगा
तो कल्याण होगा।
अगर ये बुद्धि में आया कि ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं, गोरे चिट्ठे की गोद में, तो क्या होगा?
पति तो हो जाएगा,
क्योंकि ये स्मृति की बात है, सारा भावना का खेल है। अगर पतित को देखा तो पतित बनेगी, अगर पावन को देखा तो पावन बनेगी। एक में ही दोनों हैं। तुमको किसकी अक्त देखनी है? तुमको किसका बोल सुनना है? पावन का बोल सुनना है। तो ये दृष्टि दृष्टि में ज्ञान और अज्ञानियों का भेद हो जाता है। भल वहां ब्रह्मा की संतान बने, पहला जन्म लिया, और भले यहां दूसरा जन्म लिया, द्विज बन गए, एडवांस नॉलेज में आ गए, लेकिन वो ज्ञान अभी तक भी बुद्धि में ठहरा नहीं है, जो असली ज्ञान है कि हमारा लेना देना किससे है, हमको दाता देने वाला कौन है। बस यही बात भूल जाते हैं। और जिसकी बुद्धि में से ये भावना चली गई और अशुभ भावना आ गई तो क्या होगा? खुद का भी अकल्याण करेगा और दूसरों का भी अकल्याण जरूर करेगा। खुद भी डाउट से मिलन मनाएगा और दूसरों को भी डाउट ही पैदा करेगा। तो बोला, काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते। जो काली अब जगदम्बा बनी है, वो साक्षात्कार कैसे कराएगी? वो तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। क्या अंतिम जन्म में है तो पतित या पावन? पतित। देवताएं तो अभी है नहीं, देवताओं की दुनिया ही नहीं है। पतित दुनिया में सब पतित, और पावन दुनिया में सब पावन। हाँ, नंबर वार तो होते ही हैं। इस समय सब सूत्र वर्ण में, तो क्या साक्षात्कार कराएंगे? ये जो साक्षात्कार होते हैं अभी भी और भक्ति मार्ग में भी होते थे, तो साक्षात्कार कराने वाला है कौन उनके अंदर? उन पतित शरीरों में जिनके द्वारा साक्षात्कार हो रहा है, ब्राह्मणों की दुनिया में हो रहा है या यज्ञ के आदि में हो रहा था, वो साक्षात्कार कराने वाली हस्ती कौन है? सुप्रीम सोल ना, वो शरीरधारी पतित आत्माएं तो नहीं है। तो किसको देखना चाहिए? सुप्रीम सोल को देखना चाहिए। बाप समझाते हैं, ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है, मेरे स्थूल हाथ नहीं है, ये है बुद्धि रूपी हाथ। जैसे हाथ से कोई चीज पकड़ी जाती है, तो ऐसे बुद्धि से भी कोई बात कैच की जाती है। तो ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है, अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार कराए देता हूं। क्या ये कोई ज्ञान की बात नहीं है? साक्षात्कार करना, जिनकी अल्पकाल की भावना होती है वो भावना में पूरी कराता हूं। ज्ञान में अल्पकाल की बात नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति ज्ञान में नहीं होती, यह है अज्ञानता। ज्ञान क्या है? सदाकाल की प्राप्ति करना, वो है ज्ञान। साक्षात्कार क्या? थोड़े समय के लिए साक्षात्कार कर लिया, फिर भूल जाएंगे। यज्ञ के आज में कितनों को साक्षात्कार हुई? आज उनमें से कोई है नहीं, और जो है भी उनकी हालत देखो कैसी हुई पड़ी। जो पहले देवता का पार्ट बजाते थे कई दिनों तक लगातार, वो अब राक्षस राक्षसी का पार्ट बजा रही है। तो ध्यान दीदार से फायदा हुआ, अल्पकाल की खुशी तो आ गई, वाह वाही तो मिल गई, वाह इनको शिव बाबा ने साक्षात्कार कर रहे हैं, वास्तव में ये ऊंची हस्ती है। लेकिन प्राप्ति, प्राप्ति कुछ नहीं, प्राप्ति किस चीज से होती है? हृदय ज्ञानान्न मुक्ति। तो ये गायन क्यों चला शास्त्रों में कि बिना ज्ञान के गति नहीं, सदगति नहीं, और ज्ञान दाता है एक, एक ही सत्य है और दुनिया में सब है, सब है असत झूठ। तो अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार कराए देता हूं, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते हैं। कौन साक्षात्कार करने वाले? मेरे से नहीं मिल सकते। मेरे से कब मिलेंगे? जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा हुआ है। किस बात का ज्ञान, किस बात की जानकारी, किस बात को जानना? बाप की पहचान, बाप का प्रैक्टिकल रूप। ऐसे नहीं सूक्ष्म वतनवादी है, बिंदी है, ये कोई प्रैक्टिकल रूप नहीं है। तो साक्षात्कार करने वाले कोई मेरे से नहीं मिलते हैं। मेरे से मिलने का मतलब क्या है? मेरे से मिलना माना मन मना भव होना। जो मेरे अंदर संकल्पों का प्रवाह बह रहा है, वैसा ही संकल्पों का प्रवाह उनके अंदर भी बहने लगे, ये हुआ मिलना। बाकी ऐसे नहीं कंधे पे चढ़ गए तो ये कोई मिलना, मिलना नहीं हुआ। जैसे सर्प बिच्छू टिंडन दिखाते हैं कि शंकर की आस्तीनों में घुसे बैठे रहते हैं, तो क्या कोई वो मिल गए हैं? उनको कहेंगे वो मिल गए? अगर वो मिल गए हो तो सर्प बिच्छू टिंडन रहेंगे? मिसाल एक काली का देते हैं, है तो इस रीत बहुत, एक की बात नहीं है, इस रीत है तो बहुत। हनुमान गणेश आदि बल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करते हैं, तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा। परंतु वह तो नीचे चले जाते हैं, गुरु नानक के बाद सब सिखों की गति कहां होती है? नीचे की ओर। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, दूसरा भी देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूं, करते भक्ति गुरु नानक की। सदगुरु मानते किसको? गुरु नानक को। और साक्षात्कार कराता हूं मैं, वो कैसे साक्षात्कार कराएंगे? कौन? गुरु नानक। वो तो खुद ही नीचे गिर गए। सब धर्म पिताएं पतित अवस्था में, उनमें थोड़ी ही ताकत है, न साक्षात्कार कराने की चाबी है। ये बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया। हाँ, इस बाबा ने नहीं कराया, उस बाबा ने कराया। क्यों? वो तो अंदर ही प्रवेश हुए बैठा था, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ब्रह्मा के अंदर। तो ऐसे क्यों कहा कि उस बाबा ने कराया? दूर क्यों कर दिया? जरूर वो पार्ट ऐसा पार्ट है जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है, परंतु साक्षात्कार से कोई कभी कल्याण नहीं होता। ब्रह्मा को भी साक्षात्कार हुए, कल्याण हुआ, अगर कल्याण हुआ होता तो सूक्ष्म शरीर क्यों धारण करना पड़े, सूक्ष्म शरीर के बंधन में भी क्यों बंधना पड़े। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे और आज वो है नहीं, तो फायदा क्या हुआ। तो बोला बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो हम इनको निश्चय बैठेगा कि परमात्मा बाप फिर से आया हुआ है, तब तक हम मानने वाले नहीं। परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। क्या कहा? हाँ, साक्षात्कार से निश्चय नहीं हो सकता विदाउट गीता ज्ञान। गीता माता के मुख से जो ज्ञान निकला उस ज्ञान का आधार लिए बगैर कोई कहे कि हम साक्षात्कार से परमात्मा को पहचान लेंगे, वो पहचान भी लेंगे और फिर भूल भी जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करते रहे और फिर नीचे संघ के रंग में आते आते नीचे गिरते रहे। तो निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। निश्चय कैसे बैठता है? ज्ञान से, पहचान से और योग से। योग मन मेल मिलन। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि ये साक्षात्कार मैं कराता हूं। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई। कहां? मीरा ने काहे का साक्षात्कार किया? बैकुंठवासी कृष्ण का साक्षात्कार किया, बैकुंठ का साक्षात्कार किया, लेकिन साक्षात्कार से मीरा भी बैकुंठ में नहीं गई। कहां गई? वो भी इसी नरक की दुनिया में आई हुई है। बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, यानी साक्षात्कार करने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती है। तो ऐसे नहीं कि बिना मेहनत के सब कुछ प्राप्त हो जाएगा परमात्मा से। परमात्मा कोई ऐसा अन्यायकारी नहीं है कि कोई को घर बैठे दे दे और कोई को प्राप्ति ही न कराए। परमात्मा ऐसा नहीं है। मैं बाप बनकर के आता हूं। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणिया हैं, क्या कहा, अगर कोई बात का संशय आता है तो जो भी ब्राह्मणिया हैं उनसे पूछो। किनसे पूछो? ब्राह्मणिया हैं उनसे पूछो। क्या हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया नहीं है क्या? ये सद कुछ नहीं लगाया कि जो ब्राह्मणिया हैं उनसे पूछो। ये तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार होती हैं। क्या एक जैसी नदियां नहीं होती? कोई छोटी नदी किसी में बहुत ज्ञान जल भरा हुआ है और किसी में थोड़ा है। कोई का बहुत स्वच्छ जल है और कोई का उतना स्वच्छ जल नहीं है। तो नदियां भी नंबरवार है, लेकिन है तो नंबरवार, लेकिन नदी वो जिसका सागर से कनेक्शन हो। ब्राह्मणी माना ब्रह्मा की बेटी और नदी माना सागर की पुत्री। तो सागर से कनेक्शन होने की शर्त जरूरी है। कोई तो तालाब भी है, क्या होने का किसी से कनेक्शन नहीं है? पानी तो खूब भरा हुआ है लबालब। हाँ, मानसरोवर भी तालाब हो सकता है, लेकिन कनेक्शन नहीं। कनेक्शन किससे होना चाहिए? सागर। तालाब का जल तो बंधा हुआ जल होता है, नदी तो फिर भी बहती हुई होती है, तो रुका हुआ जल अच्छा होता है क्या? है? बहता हुआ जल अच्छा होता है, स्वच्छ होता है, रुका हुआ जल तो गंदा होता रहेगा। तो कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा पानी हो जाता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते रहते। जिन तालाबों का पानी रुका हुआ है, सागर से कनेक्शन भी नहीं है, और वहां भी ऐसी श्रद्धा बैठी हुई है, वहां भी जाकर के स्नान करते रहेंगे रुके हुए जल में, गंदे जल में। वो है भक्ति की अंधश्रद्धा। ऐसे ऐसे विकारी गुरु लोग हैं, उन्होंने भी देखो करोड़ों फॉलोअर्स हैं, है खुद विकारी। ये तो बाप जाने गुरु जाने गुरु की गोथरी जाने, क्योंकि सबका पोता मिल तो किसके पास आता है? बाप के पास आता है। लेकिन जो अंधश्रद्धालु भक्त होते हैं, वो उन्हीं तालाबों में बैठ के तुबके लगाएंगे। वो समझते हैं कि यही सबसे श्रेष्ठ है। क्या वो गुरु लोग तुम्हारी गति करेंगे? बाबा पूछते हैं, जिनका ज्ञान जल रुका हुआ है, तालाब और पोखरे जैसे हैं, तुबके हैं, वो तुम्हारी गति करेंगे? उनमें खुद ही गतिशीलता नहीं है, उनसे ज्यादा तो गतिशीलता नदियों में है। गति माना चाल, नदियों के पानी में फिर भी गतिशीलता होती है, और तालाबों तो उनमें तो गतिशीलता का सवाल ही नहीं। तो क्या ये गुरु लोग तुम्हारी गति करेंगे? ये सब अंधश्रद्धा है। एक गुरु गया, उनका बच्चा गद्दी पर बैठा, फिर उनको गुरु कर देंगे। क्या कहा? ये सब कहाँ होता है? ज्ञान मार्ग में। ये सब भक्ति मार्ग में होता है। ब्रह्मा गुरु मर गया, फिर उनका जो चेला गद्दी पर बैठा, चेला हो या चेली हो, बस वो ही गुरु बन करके बैठ जाएगा। बस अब उसकी मत पे चलो, वो तुम्हारी सदगति करेगा। ऐसे समझ लेते हैं। पति भी एक किया जाता है तो गुरु भी जीवन में एक किया जाता है। अनेकों गुरु अनेकों पति करने की दरकार नहीं, क्योंकि एक से ही सदगति होती है। गुरु फिर दस थोड़े ही करने चाहिए कि पहले एक के डायरेक्शन पर चलते रहे, फिर दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे के डायरेक्शन पर चलने लगे, फिर तीसरे को पकड़ लिया, तीसरे के डायरेक्शन पर। अरे एक बार पक्का कर लो कि यही सत्य गुरु का रूप है, और बाकी सारी दुनिया में सब झूठे हैं। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। ले अभी कहते हैं सब गुरु गुरु की स्टेज पर सब झूठे हैं, सतगुरु एक है, अनेक गुरु नहीं करने चाहिए। अब क्या कह रहे हैं? कभी किसी से भक्ति नहीं छुड़ानी चाहिए। माने अगर कोई किसी की भक्ति कर रहा है गुरु की अंधश्रद्धा पूर्वक, तो उसे छुड़ाने की दरकार नहीं है। क्या करें फिर? उसको ज्ञान दें, उसको जानकारी दें कि गुरु तो सब अधूरे हैं, सतगुरु तो सिर्फ एक ही है जो सबकी सदगति करने वाला है। वो छोटों की नहीं सदगति करता, वो तो सारे विश्व की सदगति करने वाला है। उसको कहीं भटकने करने की दरकार नहीं, वो तो एवर पूज्य है। वो किसी के सामने जाकर के माथा नहीं टिका सकता। माथा टिकाना माना बुद्धि झुकाना, डायरेक्शन लेना, अब हम क्या करें, कैसे चले। तो सतगुरु होगा सतगुरु का जो पार्टधारी होगा वो किसी के सामने माथा नहीं झुका सकता। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो उनकी भक्ति आप ही छूट जाएगी। तो क्या करो, उनकी भक्ति मत छुड़वाओ, उनको बाप का परिचय दो, बाप की जानकारी दो। जब जानकारी में आएंगे तो अज्ञानता अपने आप छूट जाएगी। वो तुम्हारा है बेहद का बैराग, तो तुम्हारे तो काले मुंह बनाए दिए और उनके गोरे चित्र बनाए, सो क्यों बताओ? हाँ, वो हो गए सन्यासी, उन्होंने तो घर बार छोड़ा और जाकर के दूर बसे बीराने में। कौन किसने? हमारे तो ब्रह्मा बाबा सन्यासी हो गए क्या? हैं? ब्रह्मा बाबा ने घर छोड़ कर कहीं दूर जंगल में जाके बसे क्या? कहाँ कैसे? माउंट आबू में सिंध हैदराबाद छोड़ करके कहाँ गए? अकेले जाकर के कराची में बस गए। फिर बाद में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ, तो सब कराची में पहुंच गए। तब फिर वहां बहुत हो गए, फिर उनको यहाँ ले आए दो तीन चार वर्षों के बाद माउंट आबू। तो भरवाज तो छोड़ा ना, बाल बच्चे भी त्यागने पड़े। तो ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तो उनका हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। माने रहो भी कीचड़ में, कर्मेंद्रियों से रहो कहाँ, कर्मेंद्रियों से मन बुद्धि से उपराम रहो, और कर्मेंद्रियों से भल कोई भी करो, कर्म भल कोई भी करो, लेकिन जब बुद्धि ही नहीं लगी होगी उस कर्म में तो उसका पाप कर्म नहीं बनेगा। पाप कर्म कब बनता है? जैसे हम आंखें खोले बैठे हैं और हम किसी की गहरी याद में हैं, जिन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में देखी होंगी वो जानते होंगे। लैला मजनू की फिल्म दिखाते हैं, सीरी फरियादी की फिल्म दिखाते हैं, तो उनको जब याद में बैठे हुए दिखाते हैं या खड़े हुए या चल रहे हैं और उनकी बुद्धि कहीं दूसरी जगह, आंख देखने से ही पता लग रहा है कि ये यहाँ है ही नहीं, तो उनकी आंखों के सामने जो कोई गुजर जाता है उनको पता नहीं लगता। ऐसी बात का हमने भी अपने जीवन में कभी कभी हम तुमने भी अनुभव किया कि जब चीज हमने आंखें खुली होते हुए देखी ही नहीं तो उसका लगाव हमारे अंदर लगेगा, लगी। तो जैसे आंखों का ये मिसाल दिया, ऐसे ही और कर्मेंद्रियों के बारे में भी है यही बात कि अगर हम उन कर्मेंद्रियों से कोई कर्म कर रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, हाथों से काम कर रहे हैं, पांव से चल रहे हैं, लेकिन उसका हिसाब